रूप औदार्य गुण ही पुंसान दृष्टि चित्तापहरिण चित्तापहारिणम। वाल्मीकि जी कहते हैं चंद्रकांत आननम, आनन अर्थात चेहरा, चंद्रकांति चंद्रकांता अर्थात चांद के किरणों के समान, जैसे चांद जब किरणों से सुशोभित होता है कितना सुंदर लगता है, वैसे श्री राम का मुखारविंद भी बहुत सुंदर लगता है। रामम अतीव प्रिय दर्शनम, साथ साथ रूप औदार्य गुण ही, उनके सुंदर रूप से, उनके उदारता से और उनके दिव्य गुणों से पुंसाम दृष्टि चित्त अपहारिणम, समस्त प्राणियों के विशेष करके पुरुषों के महिलाओं के चित्त का हरण कर लेते हैं वो, अपने रूप से, अपने गुणों से और अपनी उदारता से। इसलिए भगवान का नाम है हरि, क्योंकि सबका मन हरण कर लेते हैं, हर लेते हैं। और साथ साथ में हमारे हृदय में जितने भी अशुभ चीजें हैं उनको भी नष्ट कर देते हैं। सर्व अमंगल हरे, प्रेम दिया मन हरे। इस तरह से श्री राम का सौंदर्य है, श्री राम का के दिव्य शरीर की कांति भी नीले रंग की है, परंतु श्री कृष्ण का सांवला रंग जैसे है वैसा ठीक नहीं, इसमें हरे रंग का मिश्रण है, कुछ हरे और नीले रंग का मिश्रण है उनकी शरीर की कांति। श्री राम जब वनवास में निकले चित्रकूट से होकर फिर दंडकारण्य में आए, दंडक नाम के वन में, तो वहां कई ऋषिगण जो भक्त थे, शुद्ध भक्त थे, वो अपनी तपस्या कर रहे थे। तो जैसे ही श्री राम का सुंदर रूप उन्होंने देखा तो उन्होंने सोचा कि अरे ऐसा सुंदर रूप, तो काश हम भी माधुर्य भाव में उनकी सेवा कर सकते थे। परंतु जब श्री राम को पता चला, क्योंकि उनके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित तो है ही, उनको पता था कि ये वही उनके प्रिय गोपाल हैं जो अब इस रूप में आए हैं और उनकी सेवा माधुर्य रस में करना चाहते थे, परंतु श्री राम ने कहा कि इस बार तो ये संभव नहीं है, क्योंकि मैंने एक पत्नी व्रत धारण किया हुआ है और वैसे भी आप पुरुष देह में हो, तो इसलिए ये इस समय संभव नहीं होगा। वैसे भगवान के प्रति जो संबंध है हमारा, वो इस भौतिक शरीर के आधार पर नहीं है। वैसे देखा जाए तो भगवान पुरुष हैं और सारी आत्माएं ये प्रकृति हैं, भगवान द्वारा भोग्य। फिर भी यदि कोई भगवान के किसी भी भाव में सेवा करना चाहते हैं तो उसमें देह जो है, शरीर, ये बाधा नहीं रखता, क्योंकि ये आत्मा के स्तर का संबंध है। जैसे हमारे गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के अधिकतर जो बड़े बड़े आचार्य हुए हैं वो नित्य पार्षद रहे हैं और अपने मूल स्वरूप में वो मंजरी या गोपी रहे हैं, हालांकि उनके इस लीला में, गौर लीला में, वो पुरुष देह में आए। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में जब शामिल हुए तो पुरुष देह था, परंतु ये तो बाह्य देह है, परंतु उनकी आत्मा, उनका अंतःकरण कृष्ण लीला में वो वास्तव में गोपियां या मंजरियां थीं। तो ऐसे हो सकता है कि कोई पुरुष भी गोलोक वृंदावन में गोपी जनों के पदचिन्हों का अनुशीलन करके गोपी बनने की अभिलाषा मन में रखे, और ऐसे भी हो सकता है कि कोई महिला श्री कृष्ण के वृंदावन के गोप गणों के पदचिन्हों में चल के गोलोक वृंदावन में एक ग्वाल बाल बनने की अभिलाषा मन में रखे, हो सकता है, परंतु ये कोई ऐसी सस्ती बात नहीं है। जब तक हम शारीरिक भावना में हैं, त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त नहीं कर चुके हैं, बद्ध अवस्था में ऐसी चीजों की अभिलाषा मात्र कर सकते हैं, परंतु इसमें धोखा ये है कि इस भक्ति मार्ग को हम सस्ता ले सकते हैं। हमारा संबंध भगवान श्री कृष्ण से क्या है, उसका खुलासा भगवान सही समय पर करेंगे। जब वो समझेंगे कि हम उस लायक हैं इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए, तो खैर ये सारे ऋषिगण जो थे पुरुष देह में थे, परंतु हृदय से गोपियों के भाव का अंगीकरण कर रहे थे। वो चाहते थे माधुर्य रस में, माधुर्य भाव में भगवान की सेवा करना। और श्री रामचंद्र का एक पत्नी व्रत इतना दृढ़ था कि जब श्री राम ने दोबारा सीता देवी को वनवास में भेजा, पहली बार तो अपनी साथ में आई थी और दूसरी बार तो बाहर वाल्मीकि मुनि के आश्रम में भेजना पड़ा श्री राम को सीता देवी को। और ऐसे बताया जाता है कि जब धार्मिक क्रियाएं होती हैं, अनुष्ठान आदि होते हैं, यथा यज्ञ इत्यादि, तो उस समय गृहस्थों को चाहिए कि वो पत्नी के साथ बैठें, क्योंकि पत्नी अर्धांगिनी मानी जाती है, अकेले गृहस्थ नहीं बैठ सकते। तो अब श्री राम की पत्नी तो थी परंतु साथ में नहीं थी, तो क्या किया जाए। तो श्री राम इतने पक्के रहे, उस समय क्षत्रियों के लिए त्रेता युग में ये बहुत साधारण बात थी कि अनेक पत्नियों से, अनेक रानियों से विवाह कर लेते थे। दशरथ महाराज, उनके पिता की चार पत्नियां थीं, चार रानियां थीं, और क्षत्रियों के लिए पूर्व युगों में ये तो बहुत साधारण बात थी। तो श्री राम भी यदि ऐसा करते तो कोई दोष नहीं था, वैसे तो वो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरी बात कि वो क्षत्रिय थे और क्षत्रियों के लिए त्रेता युग में भी कोई दोषपूर्ण बात नहीं थी, फिर भी श्री राम ने ऐसे नहीं किया, एक पत्नी व्रत को ही पालन करके रखा। तो कलयुग में भी ये हमारे लिए उदाहरण है, जो गृहस्थ भी हैं उन्हें एक पत्नी व्रत धारण करना है। तो जब एक पत्नी व्रत के ऊपर इतने दृढ़ हैं, तो उन्होंने इन ऋषियों को दंडकारण्य में कहा कि देखो मैंने एक पत्नी व्रत धारण किया हुआ है, तो आपकी इच्छा इस जन्म में पूरी नहीं हो सकेगी, लेकिन अगली बार जब मैं पृथ्वी लोक पर आऊंगा उस समय आप सबको अवसर मिलेगा इस माधुर्य भाव में, श्रृंगार रस में मेरी सेवा करने के लिए। तो अगली बार जब वही श्री रामचंद्र श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए ब्रजभूमि में, तो ये जो दंडकारण्य के ऋषि थे जिनके मन में ऐसी भावना थी, उनको गोपियों के गर्भ से जन्म मिला और वो भी गोपियां बन गईं, बन गए, तो उनको ऋषिचारी गोपी कहते हैं। वृंदावन के गोपियों के अनेक वर्ग हैं, उनमें से ये एक वर्ग है ऋषिचारी गोपी, अर्थात वो गोपियां जो अपने पूर्व जन्म में ऋषि थे दंडकारण्य में। तो खैर इससे हम जान सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य कैसा है। सोमवत प्रियदर्शनम, साथ साथ ये भी लीला तो हम जानते ही हैं, सीता देवी और लक्ष्मण जी के साथ में जब वो वन में थे तो शूर्पणखा नाम की राक्षसी वहां निवास करती थी जनस्थान में, और श्री राम के सौंदर्य को देखकर इतनी आकर्षित हो गई कि आके विवाह का प्रस्ताव रखा। और फिर वो लीला तो आप जानते ही हैं, कि श्री राम ने कहा कि मैंने एक पत्नी व्रत धारण किया हुआ है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मेरे भाई लक्ष्मण कुमार हैं उनके पास जाना। तो लक्ष्मण ने भी उनके साथ मजाक किया तो शूर्पणखा सीता देवी के ऊपर आक्रमण करने के लिए आई। उस समय लक्ष्मण ने श्री राम के आदेशानुसार शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। तो खैर श्री राम का सौंदर्य भी विश्वविख्यात है, जो षड ऐश्वर्यों से भगवान संपन्न होते हैं उनमें से एक है सौंदर्य। तो श्री राम भी सौंदर्य युक्त हैं, इसलिए हम जान सकते हैं कि वास्तव में वो भगवान ही है। आगे चल के जब नारद मुनि अपना वर्णन समाप्त करते हैं, वहां से निकल जाते हैं, ब्रह्मा जी वहां आते हैं। थोड़ी देर के बाद ब्रह्मा जी आदेश देते हैं वाल्मीकि मुनि को कि वो रामायण की कथा की रचना करें, और जैसे हम कल बता रहे थे उन्होंने ऐसे वरदान दिया कि आप जो भी लिखोगे वो सत्य ही होगा, एक भी शब्द झूठा नहीं होगा, गलत नहीं होगा, और आप स्पष्ट देख पाओगे राम की लीलाएं जो हो चुकी हैं, जो हो रही हैं और जो भविष्य में होंगी। और क्योंकि आपके आपकी रचना पूरी तरह से सत्य होगी और क्योंकि इतने भक्ति भाव से लिखी हुई होंगी और क्योंकि मेरे आशीर्वाद के द्वारा आप इस रचना को कर पाओगे, इसलिए जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा, ये पृथ्वी रहेगा, तब तक ये आपकी रामायण की रचना रहेगी यहां पर। तो इस तरह ब्रह्मा जी आशीर्वाद देके चले गए। वहां बालकांड में वर्णन तो हुआ, जन्म हुआ श्री राम का, और आगे चल के दूसरा जो कांड शुरू हो गया वो है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड के वर्णन में शुरुआत में ही वाल्मीकि मुनि अब श्री राम के गुणों का पुनः उल्लेख करते हैं। ये तो नारद जी ने किया था, अब स्वयं नारद वाल्मीकि मुनि कर रहे हैं। अब वाल्मीकि मुनि शुरू करते हैं गुणों का वर्णन करने करते करते सौंदर्य सही सही रूपो रूपोपन्नश्च रूप उपपन्नः। भगवान श्री राम का सौंदर्य अतुलनीय है, वीर्यवान, भगवान जैसे वीर व्यक्ति कोई नहीं है। उनके शूरवीरता का शूरवीरता की चरक झलक थोड़ी बहुत देर पहले हम देख ही चुके हैं, परंतु और एक दो उदाहरण दे दें। जब वाल्मीकि मुनि इतना जोर दे रहे हैं इस बात को कि जब श्री राम केवल 16 वर्ष के थे, तरुण थे, अभी तक पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुए थे संसार की दृष्टि से देखा जाए तो, और अभी तक उनका धनुर्वेद आदि में प्रशिक्षण पूरा हुआ नहीं था, तब महाराज दशरथ के दरबार में विश्वामित्र मुनि आए। ये तो बहुत प्रसिद्ध मुनि हैं, बहुत शक्तिशाली हैं ये। और दशरथ महाराज जब विश्वामित्र मुनि को देखा तो हार्दिक स्वागत किया जैसे उचित है, अपने राज सिंहासन पर बिठाया, बिठाकर उनसे पूछा कि जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाने के रास्ते में आशा करते हैं कि आपकी प्रगति बहुत अच्छी तरह से हो रही हो। अब जैसे एक भूखे व्यक्ति को लंबे समय के बाद भोजन मिलता है, जैसे किसी गरीब व्यक्ति को बहुत धन मिल जाता है, प्यासे व्यक्ति को जल मिल जाता है, या उत्सव के समय जैसे व्यक्ति सभी लोग एक व्यक्ति हर्षित हो जाता है, वो हमारी दशा है आपके आगमन पर। हमारा अहो सौभाग्य है कि आप यहाँ पधारे हैं आपकी कृपा बरसाने के लिए। तो कृपया बताइए कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। आप जो भी मांगेंगे हम अवश्य आपको देंगे। तो ऐसे वचन विश्वामित्र मुनि को दशरथ महाराज देते हैं। दशरथ महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि आपकी भावना को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और आपसे एक वरदान मांगूंगा, क्योंकि आपने कहा है कि मैं जो भी मांगूंगा आप वो देंगे। और यदि आप इस बात को पूर्ण करोगे, इस बात को मानोगे, तो मेरे आशीर्वाद की सीमा नहीं रहेगी। मैं ऐसे ऐसे वरदान आपको दूंगा कि आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे। मैं सिद्धाश्रम में रहता हूं, वहां पर दो असुर रहते हैं और वो बहुत हानि पहुंचा रहे हैं और शांति का भंग कर रहे हैं। हम जो ऋषि मुनि वहां पर रहते हैं, हमें शांति से रहने नहीं देते। हम जब यज्ञ आदि करते हैं तो तह तह के तुच्छ वस्तुओं को आके बिखार देते हैं। हमारे यज्ञ को, हमारे धार्मिक क्रियाओं को, हमारे तप इत्यादि को नष्ट कर देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि श्री राम को आप मेरे साथ भेजें ताकि वो इन राक्षसों का वध कर ले, और फिर 10 दिन के बाद मैं राम को वापस ले आऊंगा। आप चिंता नहीं कीजिए। जैसे ही दशरथ महाराज ने ये बात सुनी कि विश्वामित्र मुनि श्री राम को ले जाने के लिए आए हैं, तो वो बेहोश होकर गिर पड़े। दशरथ महाराज बहुत आसक्त थे श्री राम से। वैसे अपने वो चारों पुत्रों से बहुत प्रेम करते थे, परंतु चारों पुत्रों में से सबसे अधिक प्रिय उनके लिए श्री राम थे। इसमें कोई संदेह नहीं था, कोई दो राय नहीं थे इसके बारे में। और अन्य तीन भाइयों को भी ये पता था, उनके माताओं को भी पता था, और किसी को विरोध नहीं था, क्योंकि सभी लोग श्री राम से उतना ही प्यार करते थे। तो जब श्री राम को बाहर जाने की और ऐसे राक्षसों के साथ युद्ध करने की बात आई, तो सहन नहीं कर पाए। इस विचार से ही वो बेहोश होकर गिर पड़े और उठे। विश्वामित्र मुनि का चेहरा देखा, याद आया कि विश्वामित्र मुनि क्या मांग रहे थे, फिर से बेहोश होकर गिर पड़े। 1 घंटे तक बेहोश रहे, वहां शांति से विश्वामित्र मुनि बैठे रहे। फिर से होश उनकी आ गई वापस। जब होश आ गई तो देखा और कहने लगे कि देखिए विश्वामित्र मुनिवर, मेरे ऊपर आप कृपा कीजिए, मैं बूढ़ा आदमी हूँ। अब मेरा ये बच्चा जो है ये जान से भी ज़्यादा प्रिय है। वैसे ये है एक बच्चा ही है ना, केवल 16 साल का है, अभी तक ठीक से सीखा भी नहीं है कि कैसे तीर चलाना, क्या करना, अभी राजमहल के बाहर क्या है वगैरह उसे कुछ नहीं पता है। अब ये कैसे आके युद्ध करेगा? वैसे मेरे पास तो इतनी बड़ी सेना है और मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं, तो मैं आऊंगा और एक अक्षौहिणी वर्ग सेना को लेकर आऊंगा और इन राक्षसों का वध अवश्य मैं करूंगा, परंतु श्री राम को कैसे मैं भेज सकता हूं? मेरे लिए तो असहनीय है। तो विश्वामित्र मुनि ने बात नहीं मानी। दशरथ महाराज ने उनको समझाने का बहुत प्रयास किया और फिर कहने लगे, अच्छा ये तो बताइए कि ये राक्षस हैं कौन, कहां से आए हैं? तो उन्होंने कहा उनका नाम है मारीच और सुबाहु, और ये हैं वास्तव में रावण नाम के राक्षस के प्रतिनिधि। रावण का नाम सुनकर दशरथ महाराज ने कहा, ये तो संभव नहीं है, न रावण के सामने राम की बात दूर है, मैं भी युद्ध नहीं कर सकता, और ये दो जो दो प्रतिनिधि हैं रावण के, ये भी बहुत शक्तिशाली हैं, इनका सामना करना मेरे लिए भी संभव नहीं है। जब ऐसे कह दिया तो विश्वामित्र मुनि, जो कि अपने क्रोध के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, क्रोधित हो गए। हे महाराज दशरथ, आज तक ऐसी बात रघुवंश में नहीं हुई है कि किसी राजा ने इस वंश में होकर पैदा होकर वचन देकर अपना वचन न निभाया हो। कितनी बड़ी दुर्घटना है ये, कितनी बड़ी लज्जा की बात है। मेरे इतना कहने पर आप बात नहीं मान रहे हो तो मैं अभी एक क्षण भी यहां रहूंगा नहीं, ऐसे स्थान में रहने से क्या लाभ। और क्रोधित होकर उठे और उस स्थान से निकल पड़े। उधर वशिष्ठ मुनि जल्दी से आए महाराज दशरथ के पास और कहने लगे कि हे राजन, आप ऐसी गलती नहीं कीजिए। देखिए, विश्वामित्र मुनि को साधारण मत समझिए। वैसे विश्वामित्र मुनि अपनी रक्षा और अपने आश्रम की रक्षा अपने आप कर सकते हैं, वो समर्थ हैं। अपने ब्रह्म तेज से वो इन असुरों का वध आसानी से कर सकते हैं, परंतु वो आपके पुत्र श्री राम का गौरव बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें विश्व प्रसिद्ध कराना चाहते हैं, और वैसे भी अब वो ब्राह्मण हैं, तो ये सब ब्राह्मणों का कार्य नहीं है, ये क्षत्रियों का कार्य होता है। इसलिए आप श्री राम को विश्वामित्र मुनि के हवाले कर दीजिए, आपके वचन को भंग मत कीजिए, ऐसे बड़ा अधर्म हो जाएगा आपके द्वारा। और विश्वामित्र मुनि सक्षम हैं, वो श्री राम की रक्षा करेंगे अवश्य, और साथ साथ में ऐसे भी अनेक वरदान प्रदान करेंगे राम को और आपको भी। तो जब ऐसी सांत्वना दशरथ महाराज को मिली तो फिर उनका हृदय थोड़ा शांत हुआ, और फिर उन्होंने श्री राम को भेजा, राम को बुलाया वापस, राम इधर आओ। और जैसे हम कल बता रहे थे, दशरथ महाराज के चार पुत्रों में से दो जोड़ियां बन गई थीं, राम और लक्ष्मण की एक जोड़ी, भरत और शत्रुघ्न की दूसरी जोड़ी। तो जब राम आए, साथ में लक्ष्मण भी आए, जहां भी श्री राम जाते लक्ष्मण साथ में अवश्य रहते। तो जैसे ही पिता का आदेश मिला, राम तुरंत तैयार हो गए विश्वामित्र मुनि के साथ जाने के लिए, और साथ में लक्ष्मण भी आए। और फिर विश्वामित्र मुनि के साथ जो यात्रा हुई श्री राम की, बहुत रम्य स्थानों से, रमणीय स्थानों से वो गुजरे, हर एक स्थान के महात्म्य का वर्णन करते रहे, वहाँ के कथाएं बताते गए वाल्मीकि मुनि। आखिर वो पहुँचे सिद्धाश्रम में। इसके पहले ताड़का नाम की जो राक्षसी थी, जो मारीच राक्षस की माँ थी, उसका वध श्री राम ने कर दिया। और ताड़का के बाद जब सिद्धाश्रम पहुँचे और विश्वामित्र ने अपने यज्ञ आदि सब आरंभ किया, तो उस समय सुबाहु और मारीच आए आसमान से, और तरह तरह के योग शक्तियों के द्वारा उन्होंने बहुत उत्पात मचाने का प्रयास किया, बड़ा उपद्रव मचाया वहां पे। परंतु श्री राम ने उनका सामना किया और सुबाहु के वक्षस्थल में एक तीर छोड़कर उसे मार डाला, और एक तीर जब मारीच के को लगा तो तो इतने जोर से भगवान ने तीर छोड़ा था कि मारीच का शरीर जो है ये 100 योजन दूर समंदर में चला गया। अब सुबाहु को मार डाला भगवान ने, मारीच को क्यों नहीं मारा? क्योंकि मारीच आगे चल के बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे, मारीच आगे चल के वो स्वर्ण मृग बनने वाले थे जो कि आगे चल के सीता को आकर्षित कर सकेंगे। खैर वो तो अलग दूसरी लीला है। तो इस तरह से सिद्धाश्रम में श्री राम ने बड़ी राहत दिला दी सारे ऋषि मुनियों को। विश्वामित्र मुनि प्रसन्न हुए, आगे चल के विश्वामित्र मुनि श्री राम और लक्ष्मण को मिथिला ले गए जहाँ विवाह हुआ श्री राम और सीता देवी का। तो इससे हम जान सकते हैं कि वो कितने वीरवान हैं, कितने शक्तिशाली थे। ये भी एक ऐश्वर्य है भगवान का, षड ऐश्वर्यों में से। वनवास के समय जब वो पंचवटी पहुंचे थे, एक स्थान में जिसका नाम है जनस्थान, जिस स्थान पर शूर्पणखा वहां पर आई थी, उस स्थान में शूर्पणखा के दो भाई खर और दूषण भी रहा करते थे। खर और दूषण और शूर्पणखा, इनके भी रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, ये भी इनके भाई थे। तो जब शूर्पणखा के नाक और कान लक्ष्मण द्वारा काटे गए तो वो चीखते हुई रोते हुए खर और दूषण के पास गई। बड़े हैरान हो गए अपनी बहन की इस दशा को देखकर, ये किसने किया, कौन है वो व्यक्ति जिसकी ऐसे साहस हुई, इतना बल था कि जिसने मेरी हमारी बहन के साथ ऐसे किया। तो जब शूर्पणखा ने वर्णन किया राम और लक्ष्मण का, तो उन्होंने थोड़े सैनिकों को, अपने राक्षस सैनिकों को भेजा। आसानी से श्री राम ने उनका वध कर दिया। लक्ष्मण से कहा कि सीता को अंदर गुफे में बिठाओ, तुम गुफे के प्रवेश द्वार में खड़े रहना और सीता की रक्षा करना, मैं इन राक्षसों से निपटा लूंगा। जब ये असुर मर गए, राक्षस मर गए और खर दूषण को पता चला तो वो आश्चर्यचकित रह गए। तो उन्होंने 14,000 राक्षसों को भेजा और एक से बढ़कर एक बलवान ये राक्षस थे, मानो कि समुद्र की लहरें बह रही हैं। तूफान के समय जैसे तेजी से लहरें होती हैं समुद्र में, वैसे ये राक्षस एक के बाद एक अनेकों ऐसे लहरों में आ रहे थे श्री राम के सामने। परंतु श्री राम इतने वीरवान थे कि अकेले खड़े हो गए वहां, मानो कि वो सुमेरु पर्वत हो, हिले नहीं अपने स्थान से। जो आसन उन्होंने ग्रहण किया उसी आसन को पकड़े रहे और तीर चलाते रहे, और इतने तीर चलाए कि एक साथ में हजारों लोगों की हत्या करते। और उन राक्षसों को लगा कि जहां भी वो देखते हैं वहां श्री राम को ही देख रहे थे, चारों दिशाओं में उनको राम ही दिखाई पड़ रहा था। और 2 घंटे लगातार युद्ध हुआ और अकेले श्री राम ने इन 14,000 राक्षसों का वध कर दिया, हिले नहीं, बिना हिले हुए। जहां 2 चरण कमल उनके रखे थे जमीन के ऊपर, बस वहीं एक स्थान में खड़े होकर अपने तीर धनुष से उन्होंने 14,000 राक्षसों का वध किया, खर दूषण का भी वध कर दिया। शूर्पणखा को पता चल गया, अकंपन नाम के का एक राक्षस था जो दैव से बच गया, 14,000 में से एक राक्षस बच गया, और वो भागता हुआ लंका पहुंचा, रावण को खबर दे दी। रावण ने कहा कि क्या बात है? तो सारी खबर सुनने के बाद रावण हैरान हो गया कि अरे वो कौन है, कोई देव लोक से आया हुआ है या कौन है, नहीं ये तो मनुष्य है। अरे मनुष्य, मनुष्य राक्षसों का वध कैसे कर सकता है, और वो भी मेरे शूरवीर भाई खर और दूषण जैसे बलवान राक्षसों का, और उनकी समस्त सेना जिसमें 14,000 सैनिक थे, कैसे हो सकता है। फिर अकंपन ने और भी वर्णन किया, और रावण आग बबूला हो गया, खड़ा हो गया कि चलो हम जाते हैं, युद्ध करते हैं। तो अकंपन ने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं करना। फिर अकंपन था जिसने कि रावण के सर में वो बुद्धि डाल दी कि देखो उसकी जो पत्नी है वो बहुत सुंदर है, और तुम्हारा अधिकार है उस सीता के ऊपर, इसलिए सीता का अपहरण कर लो, उससे तुम्हारा जो कार्य है वो पूर्ण हो जाएगा, सही तरह से बदला ले पाओगे तुम इस अपमान का, इस अन्याय और अत्याचार का। और उसके थोड़े समय बाद ये तो रावण को बहुत प्रस्ताव अच्छा लगा, तो रावण ने कहा बहुत अच्छी बात बताई तुमने, मैं अब मारीच से मिलने जाता हूं, क्योंकि मारीच ने अब हिंसा और ये दुष्ट कार्यों को त्याग कर वो एक जगह वनवास में जाके अपनी कुटिया बनाकर वो आश्रम बना के वहां तपस्या करता था, क्योंकि रामचंद्र का एक तीर जब लगा तो उसके बस हौसले सब खत्म हो गए थे, अब वो वहां बैठ के केवल अपना तपस्या कर रहा था। तो रावण ने सोचा कि मारीच के द्वारा अब मैं कुछ ऐसे षड्यंत्र रचाऊंगा जिससे कि सीता देवी का अपहरण कर पाऊंगा। ऐसे जब विचार कर रहा था रावण, तो उस समय शूर्पणखा भी वहां पर आई, चीख रही थी जोर जोर से, बहुत हल्ला मचा रही थी, अपने भाई को कोस रही थी। तो रावण ने कहा रे इतनी चिल्ला क्यों रही हो, चुप रहो, बताओ समस्या क्या है, आपके होते हुए ऐसे कैसे हो सकता है, न केवल मेरा अपमान हुआ है लेकिन आपके दो भाई भी मर गए इत्यादि। तो बहुत भड़काने लगी शूर्पणखा रावण को, और फिर रावण ने वो योजना बनाई सीता देवी को अपहरण करने के लिए। रावण को विश्वास नहीं हुआ कि एक मनुष्य 14,000 राक्षसों का वध 2 घंटों में कर सकता है अकेले। तो इससे रावण को पता चला कि ये राम जो है ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ऐसे बलवान शक्तिशाली व्यक्तियों के बारे में तो रावण ने कभी सुना नहीं था। तो खैर ऐसे वीरवान हैं, और भी कोई गुण हैं, बहुत सारे गुण हैं जो वाल्मीकि जी बताते हैं, जिनकी चर्चा हम कल करेंगे। साथ साथ ऐसे भी कोई गुण श्री राम के हैं जो हम सबके लिए अनुसरणीय हैं। श्री राम की तरह तो हम वीरवान नहीं हो सकते, शक्तिशाली नहीं हो सकते, 14,000 राक्षसों का एक साथ एक जगह पर खड़े होकर वध नहीं कर सकते, और नहीं हमें नकल करने का प्रयास करना चाहिए, मर ही जाएंगे हम। हमें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना है, लेकिन हमारे लिए ये प्रेरणा स्रोत है भगवान के जो विविध लीलाएं हैं, भले वो युद्ध की लीलाएं क्यों न हो, वो दिव्य हैं। ऐसी दिव्य लीलाओं का श्रवण करने से हमारा हृदय शुद्ध होता है, और भगवान के प्रति प्रेम शनै शनै जागृत होता है। श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री श्री सीता राम की जय, गौर प्रेमानंदे। एक या दो प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, माइक है क्या?